नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए राम कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान राम को प्रणाम करें। रामम रामानुजम सीता भरतम भरतानुजम सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम श्रीमती सीता देवी रामचंद्र जी के भाई भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न और उनके मित्र श्री सुग्रीव साथ ही साथ उनके परम भक्त वायु पुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा। तो ये राम कथा आगे चल रही है। वैसे आज हम सोच रहे थे कि ये जो क्लासेस अभी चल रही हैं सुबह और शाम, इसमें कुछ चीज़ों की कमी है। जैसे मोबाइल्स नहीं बज रहे हैं, नहीं तो जब कॉन्ग्रीगेशन क्लास होती है संडे क्लास तो बारंबार वो कहना पड़ता है मोबाइल बंद रखिए मोबाइल बंद रखिए अपना, इसमें नहीं कहना पड़ रहा है। और एक चीज़ की कमी है, बच्चों की आवाज़ें, है ना। बारंबार आपने देखा होगा हमारे प्रवचनों में बारंबार बोलना पड़ता है बच्चों को थोड़ा संभालिए बच्चों को बाहर ले जाइए, और फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आते रहते हैं, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो कुछ चीज़ें की कमी लग रही है, लग नहीं रहा कि नॉर्मल लेक्चर है। ये सब मिलकर नॉर्मल लेक्चर बनाते हैं कि लेक्चर में डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। वैसे घर पर लोग अनुभव अभी भी कर रहे होंगे और उनका तो अनुभव बढ़ गया होगा, जो घर पर नहीं रहते हैं अब पूरा समय रह रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उनको अच्छे अनुभव हो रहे होंगे। और गौर नटराज से प्रार्थना है भगवान आपको शक्ति दें। तो रामायण की कथा हम लोग आगे जारी रखेंगे। अभी तक चर्चा हो चुकी है कि अहिल्या का उद्धार कर दिया भगवान ने और फिर अब मिथिला में वो प्रवेश करेंगे। तो ये हमें यहाँ से प्रारंभ करनी है आज की कथा। तो अहिल्या के उद्धार के बाद फिर श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि और अन्य सारे मुनियों के साथ मिथिला में प्रवेश करते हैं। तो जब मिथिला में वो प्रवेश करते हैं तो देखते हैं बहुत सुंदर व्यवस्था है। ये जो यज्ञ होने वाला था इसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की गई थी। सारे ऋषि मुनि आए हुए थे अलग अलग स्थान से, उन ऋषियों के रहने के स्थान बने हुए थे, कुटियाएं बनी हुई थी, पानी पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई थी, सारी व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। देखिए पहले राजाओं का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा होता था, भागना नहीं पड़ता था ऋषि मुनियों को, कह रहे पानी नहीं मिल रहा है कहाँ है पानी, तो सब प्रॉपर जगह पर सब ठीक था। रामचंद्र जी देखकर बड़े प्रसन्न हुए और फिर विश्वामित्र मुनि इत्यादि ने एक स्थान लिया, मतलब ऐसा था कि वो स्थान बना के रख दिया था, कोई भी ऋषि मुनि आए वो अपने अपने स्थान चुन सकते थे। तो विश्वामित्र मुनि ने एक अच्छा सा स्थान चुना और वे सब वहाँ विराजमान हुए। जैसे ही जनक महाराज को पता चला कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, वो भागते हुए आए स्वागत करने के लिए। कि बहुत बड़ी बात है विश्वामित्र मुनि आए हैं, तो कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भागते हुए आए और उन्होंने देखा कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, इतने सारे ऋषि मुनि आए हैं, हाथ जोड़कर सबका स्वागत किया, जल इत्यादि अर्पण किया, उनके चरणों को धोया और फिर उनसे कहा कि मेरा बड़ा भाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। और फिर उनको सब सुविधाएं उनकी देखी कि सब ठीक है कि नहीं, तो ऐसे। और उनके साथ साथ आए थे शतानंद। शतानंद ये दरअसल गौतम ऋषि के पुत्र हैं, अर्थात अहिल्या के पुत्र हैं, लेकिन जनक महाराज के वो कुल पुरोहित हैं, तो वो वहाँ पर थे, तो वो भी साथ में आए। तो शतानंद आए, सारे लोग आए, स्वागत हुआ, बैठकर बातचीत हुई, तो फिर विश्वामित्र मुनि को देखा, अन्य ऋषियों को देखा, जनक महाराज ने कहा बड़ा भाग्य है, फिर देखा ये दो बालक कौन है, तो जनक महाराज ने पूछा विश्वामित्र मुनि से कि ये जो दो बालक हैं, एक शेर जैसा दिख रहा है और दूसरा तो मानो उनके संग में चलने वाला उनका साथी, कितना सुंदर ये दृश्य है, तो हैं कौन ये दोनों बालक, किसके पुत्र हैं? तो उस समय विश्वामित्र मुनि ने केवल दशरथ पुत्र हैं कहकर नहीं कहा, उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कि कैसे अयोध्या से चले, ताटका का वध किया, फिर सिद्धाश्रम में भगवान राम ने वहाँ मारीच और सुबाहु का उद्धार किया, फिर आगे आगे बताते हुए उन्होंने बताया कि अभी भी अहिल्या का उद्धार करके आ रहे हैं, अहिल्या और गौतम मुनि दोनों ने दर्शन किए, ये श्री राम हैं। तो जैसे ही शतानंद ने सुना, क्योंकि उनकी माता पिता का नाम आया अहिल्या और गौतम मुनि, तो शतानंद ने सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए, तो कहने लगे क्या इन्होंने देखा मेरी माता को, क्योंकि किसी ने देखा नहीं था, जब से श्राप मिला था तब से तो वो अदृश्य हो गई थी। तो शतानंद ने कहा क्या देखा इन्होंने मेरी माता को, अच्छा क्या मेरी माता ने, पिताजी भी आए थे और उन्होंने फिर सेवा की इनकी, क्या क्या अर्पण किया था और कैसे हुआ ये सब, बड़े उत्साह हो गया। जब व्यक्ति को उत्साह होता है तो वो एक ही बात को कभी कभी दोहराते हैं, कभी कुछ कहते हैं, बड़े आनंद में थे शतानंद ये सुनकर कि मेरे जो माता हैं वो पुनः फिर से मेरे पिता से फिर से मिल गई हैं, अपने स्थान पर आ गई हैं, तो बहुत आनंद में थे, तो उन्होंने बहुत गुणगान किया। तो उस समय फिर विश्वामित्र मुनि ने वृत्तांत बताया कि कैसे भगवान राम के प्रवेश करते ही फिर आपकी माता अपने मूल रूप में आ गई और फिर कैसे कैसे क्या क्या हुआ उन्होंने बताया, तो ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। तो उस समय शतानंद मुनि कहने लगे श्री रामचंद्र जी से कि ये जो विश्वामित्र मुनि आपके साथ बैठे हैं, मैं इनका इतिहास कहता हूँ। वैसे हमने उस दिन जब विश्वामित्र मुनि अयोध्या आए थे तो थोड़ा सा संक्षेप में कहा था, तो अब शतानंद उनका इतिहास बताते, बहुत सुंदर इतिहास है विश्वामित्र मुनि का और बड़ा ज्ञान देने वाला है। तो बताने लगे कि दरअसल ये लंबा, बहुत लंबा इतिहास है, तो वो कहने लगे कि कैसे एक ब्रह्मा जी के वंशजों में आए कुश के पुत्र हुए कुशनाभ, और कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी, और गाधी के पुत्र हैं विश्वामित्र। वैसे ये बहुत रोचक एक प्रसंग है, अन्यत्र दिया गया है, यहाँ नहीं दिया गया। हुआ ये था कि विश्वामित्र का जन्म जो हुआ वो क्षत्रिय में हुआ और आगे चलकर वो ब्राह्मण बने, लेकिन परशुराम जी ब्राह्मण में जन्मे लेकिन कार्य क्षत्रिय का किया। तो ये कैसे हुआ इसका वर्णन किया गया है, ये ऋचिक मुनि से आता है। तो ऋचिक मुनि की जो पत्नी थी वो गाधी की पुत्री थी, गाधी जिनका वर्णन आ रहा है। तो ऐसा हुआ कि ऋचिक मुनि चाहते थे संतान हो और गाधी भी चाहते थे कि मेरी भी कोई संतान हो। तो फिर अर्थात मान लीजिए कि माता थी ऋचिक मुनि की पत्नी की माता और पत्नी दोनों संतान चाहते थे, तो ऋचिक मुनि ने एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि तैयार की और उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को दिया और ये उनकी माता के लिए भी दिया कि आप दोनों ले लीजिए, आप गर्भ ग्रहण करेंगे। तो ये कहकर वो चले गए। जब वो चले गए तो माता ने सोचा कि ज़रूर अपनी पत्नी के लिए अच्छा बनाया होगा और मेरे लिए इतना अच्छा नहीं। तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम ये ले लो और अपना भाग मुझे दे दो। तो पुत्री ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दे दिया। तो दोनों ने ग्रहण कर लिया। जब ऋषिक मुनि आए तब उनको पता चला तो उन्होंने कहा तुमने ये क्या कर दिया, ये तो तुमने गलत कर दिया, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए बनाया था उससे ब्राह्मण उत्पन्न होने वाला था और जो मैंने उनके लिए बनाया था उससे क्षत्रिय, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं। अब तुमने वो ले लिया तो तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय होगा और उनका पुत्र ब्राह्मण। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे क्षत्रिय, मैं तो ऋषि मुनि रहने वाले, मुझे क्षत्रिय की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मेरा पुत्र क्षत्रिय नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने ये कर लिया, फिर भी इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय नहीं होगा, लेकिन जो उसका पुत्र है वो बड़ा भयंकर क्षत्रिय होगा। तो ऋचिक मुनि के पुत्र हुए जमदाग्नि और जमदाग्नि के पुत्र हुए परशुराम, जो बड़े भयंकर क्षत्रिय बने। और दूसरी ओर जहाँ उन्हें क्षत्रिय बनना था विश्वामित्र को, तो फिर उनके लिए उन्होंने कहा कि वो आगे चलकर अच्छे ब्राह्मण बनेंगे। और इस तरह से विश्वामित्र मुनि आगे ब्राह्मण बने। तो उनका इतिहास बताया कि विश्वामित्र मुनि जब राजा थे, विश्वामित्र राजा विश्वामित्र, तो एक समय पहुंचे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में और वहां पर उनका स्वागत किया। वशिष्ठ मुनि ने कहा अपनी सारी सेना को बुलाइए, ये हम उस दिन वर्णन कर चुके हैं इसलिए विस्तार से नहीं जा रहे। तो फिर जो गायें थी, कहीं पर नंदिनी नाम है, कहीं सबला नाम है, तो ऐसे उसने सारा उनका जितने भी सेना थी समाप्त कर दिया। वो हार गए, चले गए। तो अब उन्होंने तपस्या की, उन्होंने सोचा कि अब मुझे बड़ी कड़ी तपस्या करके अब मुझे ये जो ऋषि का पद है वो प्राप्त करना है। तो वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि ने बहुत कड़ी तपस्या की और उस तपस्या के द्वारा उनको शिवजी से, शिवजी की बड़ी कड़ी तपस्या की और शिवजी से उन्हें, जब शिवजी प्रकट हुए क्या चाहिए, तो उन्होंने अब ऋषि पद नहीं मांगा, उन्होंने कहा मुझे जितने भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, पशुपतास्त्र इत्यादि देवताओं के, वो सब दीजिए, ये वशिष्ठ का नाश करके आऊंगा। ये नहीं कहा उनको, लेकिन इच्छा थी, तो सब मुझे दीजिए। तो शिवजी ने प्रदान कर दी, तथास्तु। शिवजी तो भोले बाबा है ना, तो उन्होंने दे दिया। तो अब उन सारे अस्त्र शस्त्रों को लेकर आए और उन्होंने आश्रम पर चलाने शुरू कर दिए। जितने भी ऋषि मुनि थे भागे वहां से, वशिष्ठ मुनि के आश्रम से, कहीं रहने का स्थान नहीं। और वशिष्ठ मुनि को पता चला कि ये तो अपना ब्रह्म दंड केवल लेकर आए और खड़े हो गए, कहे कि अब देखता हूं कौन सा इसका अस्त्र शस्त्र प्रभाव करता है। और वो बस खड़े हो गए वहां पर। और विश्वामित्र मुनि जितने उनके पास आग्नेयास्त्र, वारुणेयास्त्र, पशुपतास्त्र जितने थे सब चला दिए, कुछ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया कि अब इनको तो मैं मार डालूंगा। तो अब जब ब्रह्मास्त्र निकला, तो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र है, पृथ्वी हिल जाती है ब्रह्मास्त्र से। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाला और अब सारे लोग घबरा गए, अब क्या होगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के सामने खड़े होना। और उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया वशिष्ठ को मारने के लिए, और वशिष्ठ मुनि के सामने ब्रह्मास्त्र भी विफल हो गया। बड़े आश्चर्य की बात, ब्रह्मास्त्र का विफल हो जाना, वशिष्ठ मुनि ने उसको भी विफल कर दिया केवल अपने ब्रह्मदंड से। उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई खड़े नहीं थे लेकर, केवल ब्रह्मदंड की शक्ति से। और जब ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो जो ब्रह्मास्त्र की अग्नि थी वो उनके ब्रह्मदंड से निकलने लगी, बड़ी भयंकर अग्नि, क्योंकि ब्रह्मास्त्र विफल हुआ है। तो उस समय सारे देवताओं ने, सारे लोगों ने आकर वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना की, कृपया आप संभालिए, ये अग्नि इस सारे ब्रह्मांड का नाश कर देगी, अब आप ही हैं जो इसको शांत कर सकते हैं। विश्वामित्र ने तो चला दिया, लेकिन आप उसे शांत कीजिए। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने उसको शांत किया। देखिए ये ब्राह्मणों के गुण हैं, उस व्यक्ति के पास शक्ति होनी चाहिए जिसको उसका शक्ति का उपयोग करने का सही मार्ग पता है। अगर शक्ति ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होती है जिनको ना तो उसको संभालने की ताकत पता है, ना किस तरह चलाना है, किस पर चलाना है पता है, तो वो नाश करती है। क्यों? क्योंकि शक्ति ये भी भगवान का अंश है। जितनी भी हम शक्तियां इस जगत में देखते हैं वो भगवान की शक्ति का ही रूपांतरण है। तो हर शक्ति, चाहे बल हो, चाहे धन हो, चाहे बुद्धि हो, ये उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो इन चीजों का सही उपयोग कर सके। आज समाज में दुर्व्यवस्था इसलिए है क्योंकि ये चीजें उन लोगों के पास हैं जिन्हें इनका उपयोग नहीं पता। आज बुद्धि ऐसे लोगों के पास है जो लोग सोचते हैं कि हम अपने बल पर इस जगत को बहुत अच्छा बना लेंगे, हम मृत्यु से एक दिन परे चले जाएंगे। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, ये वैज्ञानिक ये पोस्ट डेटेड ब्लैंक चेक देते हैं कि हां एक दिन होगा ऐसा, कब होगा किसी को नहीं पता। तो इसलिए ये जो शक्ति है ये उसके पास होनी चाहिए। किसी भी तरह की शक्ति क्यों ना हो, चाहे वो धन की शक्ति हो, बल की शक्ति हो, यश की शक्ति हो, वैराग्य की शक्ति ही क्यों ना हो। वैराग्य भी हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वैराग्य भी उस व्यक्ति के लिए है जो उसको संभाल सके। इसीलिए ये जो शक्तियां, क्योंकि ये सब शक्ति प्रदान करती है, वैराग्य शक्ति प्रदान करता है, धन शक्ति प्रदान करता है, बल शक्ति प्रदान करता है, तो उसके लिए हमारे पास क्षमता होनी चाहिए उसको संभालने की, अन्यथा समाज में उत्पात होगा। और आज यही कारण है समाज में उत्पात होने का, शक्ति बल यश ये उन लोगों के पास इस समय नहीं, जिनके पास है वे लोग भगवान के भक्त नहीं हैं। सही उपयोग शक्ति का है भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना। जय श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। ये सही उपयोग है, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन के पास शक्ति थी, कितने सारे अस्त्र चला सकता था, अर्जुन ने अपने लिए मना कर दिया, मैं नहीं चलाऊंगा, लेकिन भगवान के लिए उसने उपयोग किया, हर अस्त्र का उपयोग किया भगवान के लिए। तो जो शक्ति हमारे पास है, जो बल हमारे पास है, जो बुद्धि हमारे पास है, जब तक उसको भगवान से नहीं जोड़ते हैं वो केवल उत्पात का कारण बनती है। जैसे हम यहां देखते हैं विश्वामित्र मुनि, इतना बल इतनी शक्ति, ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं। अगर विश्वामित्र, अगर वशिष्ठ मुनि रोकते नहीं तो सारा ब्रह्मांड जल जाता। तो ऐसा जो नाश होता है जिससे सबको कष्ट होता है, आज जो जगत में हो रहा है वो भी यही कारण है। क्या कारण है, आज हम लोग देखते हैं कि समाज में इतना उत्पात है, लोग डरे हुए हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इतनी महामारी फैली, कारण क्या है। कारण है कि हमने अपनी जीवन शैली ऐसे बना ली है जिसमें पाप अधर्म को प्रमुखता दी गई है। इसलिए ये समय हमें बहुत सी शिक्षाएं देता है। पहली शिक्षा देता है कि हमें जीवन शैली बदलने की आवश्यकता है। अगर इसी प्रकार की जीवन शैली चलती रही तो ऐसे और बहुत से कष्ट हमारे जीवन में आएंगे। दूसरा चीज, अधर्म को, पाप को त्यागने की आवश्यकता है। तीसरी चीज, हमें एक भगवत केंद्रित जीवन जीने की आवश्यकता है। ये भय से मुक्त होने की आवश्यकता है। अभय चरणार विंद रे, भगवान के चरण कमलों की अगर हम शरण लेते हैं तो निश्चित हम भय से मुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए समाज में उत्पात ना हो, शक्ति उनको दी जाती है जो इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे जब विश्वामित्र ने देखा कि अरे सारी शक्तियां विफल हो गई, कुछ नहीं हुआ वशिष्ठ मुनि का, तो वे वापस चले गए तपस्या करने। उन्होंने सोचा और तपस्या करनी चाहिए, तो बड़ी कड़ी तपस्या कर रहे थे। वो तपस्या में थे, उस समय एक राजा थे जिनका नाम था त्रिशंकु, और इनकी बड़ी इच्छा थी, ये इक्ष्वाकु कुल के ही थे, इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं स्वर्ग में इसी देह में जाऊं। तो वे वशिष्ठ मुनि के पास आए, क्योंकि इक्ष्वाकु कुल के कुल गुरु हैं वशिष्ठ मुनि, उनके पास आए कि मेरी ये इच्छा है। वशिष्ठ ने कहा ऐसा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा यह संभव नहीं है इस देह में स्वर्ग में जाना, मना कर दिया। तो उनको बड़ा क्रोध आया, तो वे चले गए उनके पुत्रों के पास, वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के पास। उनको जाके बड़ी याचना की कि मैं बहुत आपसे याचना करता हूं कि आप कुछ तो ऐसा कीजिए, मैं बहुत कष्ट में हूं, बस मैं इस देह में स्वर्ग जाना चाहता हूं। और उन्होंने यह भी कहा कि आपके ही पिता मेरे कुलगुरु ने मना कर दिया, लेकिन आप इस यज्ञ को कीजिए। तो उनके जो पुत्र थे वो बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपको आपके गुरु ने मना कर दिया और फिर भी आप उस कार्य को करना चाहते हैं, केवल समाज में उत्पात होगा, मत कीजिए इसको और चले जाइए, हम कोई ऐसा यज्ञ नहीं करेंगे। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब हम गुरु के वचनों को नहीं मानते हैं, जैसे जो हमें चाहिए, यहां त्रिशंकु को चाहिए था कि मैं बस स्वर्ग में जाऊं, अगर गुरु मान जाते तो उनके लिए गुरु बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुरु ने सही ज्ञान दिया। गुरु का अर्थ होता है भारी, गुरु का अर्थ होता है वो जो काटे। गुरु मतलब वो नहीं है जो केवल कुछ धन लेने के लिए आप जो कहें उसको अनुमति दे दे। गुरु वो है जो आपके बंधनों को, आपकी आसक्तियों को काटे। गुरु इसीलिए भारी, गुरु का अर्थ होता है भारी। तो गुरु के पास हमें जाना चाहिए इस भाव में कि गुरु हमसे अधिक जानते हैं, अगर वो मना कर रहे हैं किसी चीज को तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी इच्छाएं इतनी तीव्र होती हैं कि गुरु के मना करने पर भी हम उसको कर बैठते हैं और फिर नाश होता है। तो उनके पुत्रों ने समझाया कि आपके गुरु ने मना किया है, आप मत जाइए। यह हम लोग देख रहे हैं, रामायण हो, महाभारत हो, भागवत हो, गुरु को कितना महत्व दिया जाता। ये हमारी परंपरा थी, सभ्यता थी। हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता ये गुरु पर आधारित थी, क्योंकि आध्यात्मिक सभ्यता आधारित है गुरु पर, परंपरा पर। और इसीलिए भक्ति मार्ग में गुरु का बहुत महत्व है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात न गति कुतोपी। अगर गुरु की कृपा हो जाए, प्रसाद मतलब कृपा, अगर गुरु की कृपा हो जाए, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, भगवान की कृपा निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता, भगवान भी रोक नहीं सकते। वैसे ये स्टेटमेंट कहना जरा अजीब लगता है, ऐसा क्या है भगवान भी नहीं कर, निश्चित भगवान नहीं रोक सकते। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाए, भगवान को करना ही पड़ता है, भगवान बाध्य हैं, क्योंकि उनका प्रेम है अपने शुद्ध भक्तों के प्रति। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बताया अपने शिष्यों को कि गोलोक में तुम्हें जाने की कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बैकडोर एंट्री दूंगा, पीछे दो, पीछे के दरवाजे से ले जाऊंगा गोलोक में, आगे से तो तुम्हारी योग्यता नहीं है जाने की। अर्थात जो चाहें वो गुरु कर सकते हैं। तो इस भाव से हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो यहां देखते हैं कि त्रिशंकु बड़ा दुखी हो गया, उनके पुत्रों ने भी मना कर दिया, अंततः घूमते हुए विश्वामित्र मुनि के पास आया और उनसे कहा कि आप सब कर सकते हैं। और देखिए वशिष्ठ ने मना कर दिया और उनके पुत्रों ने मना कर दिया। वैसे विश्वामित्र को कोई करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जैसे ही सुना किसने मना किया, वशिष्ठ ने, चलो आओ मैं करूंगा यज्ञ, मैं देखता हूं कैसे नहीं होता। तो उन्होंने कोई त्रिशंकु को आनंद देने के लिए नहीं किया, अपनी शत्रुता को स्थापित या बढ़ाने के लिए किया। ऐसा होता है ना कि जब ऐसा मेरे शत्रु ने ऐसा किया, नहीं तब तो मैं तुम्हें जरूर करूंगा। तो उन्होंने यज्ञ ही नहीं, उन्होंने सारे ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ करने वाले, आदेश लिखकर भेजा, जाओ ये मेरा आदेश सबको सुनाओ कि मैंने सबको बुलाया है यज्ञ करने के लिए, और जो नहीं आएंगे मैं उनको श्राप दे दूंगा। तो सारे ऋषि मुनि आए, केवल वशिष्ठ मुनि के पुत्र और वशिष्ठ वो नहीं आए। उन्होंने कहा हमारे कुछ लेना देना नहीं है इससे। तो उस समय जब उनको पता चला तो उन्होंने श्राप भी दे दिया वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को। लेकिन कोई श्राप ऐसा, जब उनके इतने अस्त्र शस्त्र नहीं लगे। तो उसके बाद उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में जब उन्होंने देवताओं को बुलाया आहुति के लिए, कोई देवता नहीं आए। ये वो समय था यज्ञ का जब यज्ञ में स्वयं देवता आके आहुतियां लिया करते थे। आज तो हम लोग नाम पढ़कर डाल देते, पता नहीं चलता है कि अग्नि में गया या कहां गया, लेकिन उस समय वो प्रत्यक्ष इंद्र आते थे, वरुण आते थे, सब आते थे, अपना अपना हिस्सा स्वीकार करते थे। तो उन्होंने बुलाया, एक भी देवता नहीं आए, बड़े आश्चर्य की बात। तो विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, देखो अब मेरा बल, मैं अपने बल से इसको अभी स्वर्ग भेजूंगा। और उन्होंने ये कहा और उनके बल से सबने देखा कि त्रिशंकु उसी देह में स्वर्ग में पहुंच गए, स्वर्ग की ओर। अब जैसे ही वो स्वर्ग पर पहुंचा, एंट्री कर रहा था, वहां इंद्र खड़े थे, आए होंगे घूमने के लिए गेट पर, तो इंद्र खड़े थे। इंद्र ने कहा, क्या बात है भाई, कहाँ आ रहे हो, ये देह में अलाउड नहीं है अंदर आना। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वो मुझे किसी ने भी वापस जाओ। तो उनको उल्टे सर वहां से फेंका, मतलब सर पृथ्वी की ओर, पांव ऊपर, और वो गिर रहे हैं नीचे। तो जो गिरने लगे तो चिल्लाए त्रिशंकु, बचाइए बचाइए विश्वामित्र मुनि को। तो विश्वामित्र मुनि को पता चला, अरे इंद्र की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे भेजे हुए, तो उन्होंने उधर ही रोक दिया, तुम उधर रुक जाओ। तो झगड़ा चल रहा है इंद्र में और हमारे विश्वामित्र में, लटक गया। वो ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं कि ये इंद्र कि ऊपर नहीं आएगा और ये नीचे नहीं आने दे रहे हैं। अब वो इसीलिए त्रिशंकु शब्द ही इसीलिए आता है, उसके बाद से प्रसिद्ध हुआ कि जब कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में होता है जहां वो बेचारा फंस जाता है, तो उसको कहा जाता है त्रिशंकु हो गया है। त्रिशंकु मतलब ना ऊपर जा सकता है ना नीचे, और लटका पड़ा है वहां पर। और ये दोनों अपनी चला रहे हैं, इंद्र कह रहे मैं आने नहीं दूंगा, विश्वामित्र कह रहे मैं नीचे नहीं आने दूंगा। पहले तो बेचारा कम से कम पृथ्वी पे तो था। तो जब देखा कि इंद्र प्रवेश नहीं दे रहे हैं, तो विश्वामित्र मुनि ने कहा, मैं एक नया स्वर्ग बना दूंगा। देखिए क्या, जब किसी के पास बहुत शक्ति हो जाए, और अभी हम यही चर्चा कर रहे थे, वो बड़ा दुरुपयोग करते हैं। इसलिए शक्ति किसके पास होना है बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने कहा, मैं एक नया स्वर्ग बना दूंगा इसके लिए, त्रिशंकु के लिए, लेकिन नीचे नहीं आने दूंगा इसको, बेचारा लटका हुआ है सर नीचे पांव ऊपर। तो उन्होंने वहीं पर उसके लिए नया स्वर्ग बना दिया, नए सप्तऋषि, सब कुछ नया, पूरा नया स्वर्ग क्रिएट कर दिया उनके लिए। आश्चर्य सब लोगों को, सब देख रहे हैं ये क्या हो गया, नियम प्रकृति का बदल रहा है, नया स्वर्ग बन गया है। और वहां वो है, फिर सारे ये चल ही रहा था झगड़ा इंद्र से, फिर सारे ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने आकर प्रार्थना की विश्वामित्र से, क्या कर रहे हैं आप ऋषि हैं, आपको अच्छा और ऋषि पद प्राप्त होना, उस समय वो राज ऋषि थे, तो आपको और अच्छा ऋषि पद प्राप्त होना है, ये सब मत कीजिए। तो फिर उन्होंने स्वीकार किया इस शर्त पर कि वो जहां त्रिशंकु है उसको नीचे नहीं उतारना। तो उन्होंने कहा, ठीक है हम उसको वहां स्वीकार करते हैं, स्वर्ग में तो नहीं लेकिन जहां है वहां पर रह सकता है। और फिर सारे ये जो ऊपर नीचे करने के सिस्टम था वो बंद हो गया। ये ऐसे ही होता है, एक बार रावण ने भी इच्छा की थी कि यहां से स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देता हूं मैं, टेंशन ही नहीं, जिसको जाना जा सकते हैं, सीढ़ी चढ़े स्वर्ग पहुंच जाए। तो ऐसे त्रिशंकु का वहां पर फिर हुआ। तो ये इतिहास वो सब बताने लगे और फिर बोलने लगे कि फिर भी अभी उन्हें ब्रह्म ऋषि बनने की इच्छा थी, तो और तपस्या करने चले गए। राज ऋषि बन चुके थे, कई हजार वर्ष तपस्या हो चुकी थी, अब उन्होंने कड़ी तपस्या की। और जब वो तपस्या कर रहे थे तो फिर इंद्र ने मेनका को भेजा, मतलब बहुत तपस्या, भगवान की तपस्या में मग्न थे, पांव में छन छन छन, आंखें खुली, मेनका से प्रभावित हो गए, हरि बोल, विश्वामित्र मुनि 10 साल के लिए गायब। फिर उनको ये आया, अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये मेरी तपस्या कर रहा था, ये कहां आ गया। देखिए ऐसा ही होता है, जब भक्ति मार्ग में भी किसी को बड़ा अहंकार हो जाता है कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है, मैं कितना अच्छा भक्ति करता हूं, तो फिर माया ऐसा थप्पड़ मारती है कि उसको कुछ साल बाद याद आता है, क्या हुआ, मैं कहां था। तो इसी तरह विश्वामित्र मुनि, जैसे पिक्चरों में देखा है ना, अचानक पता चलता है उसको झटका, मैं कहां हूं पता चल रहा है, ऐसे उन्होंने भी सोचा। ये हमने कई बार सुना है ना, सौभरी मुनि की कथा सुनी है, सौभरी मुनि पानी के अंदर तपस्या कर रहे हैं कि ये बड़ी माया है बाहर, मैं माया में फंसना नहीं चाहता हूं। पानी के अंदर जाकर तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कठोर तपस्या कर ली, मछलियों को देख लिया, दो मछलियों को प्रेम का आदान प्रदान करते हो। अब मछलियों से कौन प्रभावित होता है, कौन मछलियों को देखकर कौन प्रभावित होगा? सौबरी मुनि उनको देखकर प्रभावित हो गए, मन विचलित हो गया। बाहर आए, राजा वंधाता के पास गए, बोले मुझे विवाह करना है तुम्हारी पुत्रियों से। 50 पुत्रियां थी उनकी। राजा मंधाता ने देखा ये बूढ़ा व्यक्ति से कौन शादी करे, मेरी पुत्रियों का शादी है, मना नहीं करना था। उसने कहा आप चले जाइए वहां पर, पुत्रियों का वहां है मेरी, अगर कोई भी पुत्री आपसे तैयार है शादी करने के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं शादी करवा दूंगा। क्योंकि इनको मालूम था इनको देखकर कोई पुत्री मेरी हाँ बोलेगी ही नहीं, तो उन्होंने बोला जाइए आप कर लीजिए। तो ये समझ गए कि क्यों बोल रहा है राजा। तो उन्होंने जाते जाते अपना बड़ा सुंदर रूप बना लिया, इतना सुंदर, इतना आकर्षक कि जब वहां पहुंचे तो 500 राजकुमारियों ने कहा मैम हमें इनसे विवाह करना, एक ने नहीं। और उन्होंने 500 से कर लिया। क्या कर रहे थे? तपस्या, जल के नीचे, माया में नहीं पड़ेंगे। और 500 से विवाह कर लिया। फिर विवाह हो गया, काफी समय हो गया। एक दिन नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनको याद आया मैं क्या कर रहा हूं यहां पर तो पानी के अंदर था, तपस्या कर रहा था, कहां पहुंच गया। इसे माया कहते हैं कि हम लोग बहुत कहीं किसी अच्छे स्थान पर आगे 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 बढ़ रहे हैं, फिर माया का थप्पड़ पड़ता है, फिर कई साल बाद याद आता है मैं क्या कर रहा हूं, कहां था मैं और कहां आ गया। तो विश्वामित्र मुनि कभी कहता, ऐसे कई उदाहरण है। लेकिन एक और हम विश्वामित्र मुनि के उदाहरण देखते हैं, सौबरी मुनि के उदाहरण देखते हैं, जिनको केवल थोड़े से चीजों से पतन हो गया। लेकिन दूसरी ओर एक उदाहरण है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने कोई हजारों वर्षों तक तपस्या नहीं की थी। हरिदास ठाकुर केवल भगवान के नाम का उच्चारण करते थे और उनको प्रभावित करने के लिए एक वेश्या को भेजा गया, बहुत सुंदर वेश्या। रात्रि के समय वो आई अकेले में, जहां कोई नहीं थे, तो वो आई और हरिदास ठाकुर समझ गए। लेकिन हरिदास ठाकुर ने सोचा कि इसका भी उद्धार करना चाहिए। देखिए भक्त क्या भाव हो सकता है, इसको कहते हैं करुणा की पराकाष्ठा। कि वो समझ गए हरिदास ठाकुर कि ये मेरे मुझे बदनाम करने आई है, अगर मैंने इसके साथ कुछ भी किया तो अभी पूरे जगत में बदनाम कर देगी और मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर ने सोचा नहीं, इसका उद्धार करना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर वहां बने रहे, वेश्या आई, रात को आई, उन्होंने कहा पूरा बैठे रहो, अभी जप कर रहा हूं मैं, बस मेरा पूरा जप हो जाए फिर जो तुम कहोगी करेंगे। पूरी रात बैठी रही, हरिदास ठाकुर के मुख से भगवान का नाम सुनती रही, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कहते हैं लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हए। इसने तो पूरी रात हरिदास ठाकुर के साथ उनके मुख से भगवान का नाम सुना, क्या प्रभाव हुआ होगा उसको। लेकिन फिर अगले दिन वो आई, मैं अब जाती हूं, आज फिर आऊंगी। अच्छा ठीक है। फिर आई हरिदास ठाकुर, फिर अभी मेरा जप पूरा नहीं हुआ। तीसरे दिन समर्पण कर दिया, 3 दिन बाद उसने क्षमा मांगी हरिदास ठाकुर से। तो एक और हम देखते हैं विश्वामित्र मुनि, हजारों वर्ष की तपस्या करने पर भी एक जरा से एक अप्सरा से प्रभावित होगा। और इधर हरिदास ठाकुर कोई बड़ी तपस्या नहीं, केवल नाम का बल, भगवान के नाम की शक्ति, पूर्ण श्रद्धा उसमें, प्रभावित नहीं हुआ। आगे चलकर कहा जाता है स्वयं उनको प्रभावित करने के लिए माया देवी आई थी, हरिदास ठाकुर प्रभावित नहीं हुए। तो ये भक्ति की शक्ति है। तो ऐसे विश्वामित्र मुनि ने तपस्या की और फिर भंग हो गई। फिर से उन्होंने तपस्या की बहुत कड़ी, उनको ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करना है। लेकिन फिर रंभा आ गई, इंद्र के पास कमी नहीं है अप्सराओं की, तो इंद्र भेजते रहते, मेनका को भेजा, फिर दूसरी बार कहा तो मेनका ने कहा नहीं नहीं वो पहली बार गए थे तो अब तो मार डालेगा, ठीक है रंभा को भेज दिया। रंभा आई, रंभा प्रभावित करने लगी। विश्वामित्र मुनि ने देखा, इस बार काम वासना से प्रभावित नहीं हुए लेकिन क्रोध आ गया, उन्होंने देखा और उसको पत्थर बना दिया, रंभा पत्थर हो गई और विश्वामित्र मुनि का बल चला गया तपस्या का, क्रोध कर दिया उन्होंने। तो फिर भी लगे रहे बड़ी तपस्या की। अंत में उनको ब्रह्मा जी ने आकर महर्षि पद दे दिया कि तुम ब्रह्म ऋषि हो। महर्षि ने ओके ब्रह्म ऋषि, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा जब तक वशिष्ठ मुनि इसको नहीं कहेंगे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और फिर उन्होंने वशिष्ठ मुनि के चरण पकड़े, नम्रता दिखलाई। अब तक अहंकार था, नम्रता दिखलाई विश्वामित्र मुनि ने, और वशिष्ठ मुनि ने स्वीकार किया उन्हें, ठीक है। और तब से वो ब्रह्म ऋषि हुए। तो ये पूरा वृत्तांत शतानंद उनको समझाते हैं, सिखाते हैं। तो ये बहुत सुंदर वृत्तांत हुआ। अब विवाह की बात होनी है, सीता के विवाह की बात। तो विश्वामित्र मुनि ने जनक महाराज से कहा कि ये राम और लक्ष्मण ये आपके उस धनुष को देखने के बड़े लालसा है, इनको आपका वो धनुष देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं उससे पहले इसका इतिहास बताता हूं, ये धनुष कहां से आया। तो उस समय वैसे मिथिला नगरी का भी एक इतिहास है कि ये नाम मिथिला कैसे आया, जनक कैसे आया। तो ऐसा हुआ कि एक राजा थे इक्ष्वाकु कुल के, एक समय वो एक यज्ञ करना चाहते थे। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं। तो वशिष्ठ मुनि उस समय इंद्रदेव को वचन दे चुके थे यज्ञ के लिए। तो उन्होंने राजा से कहा कि मैं तो इंद्र को वचन दे चुका हूं, मैं जा रहा हूं, आने के बाद करेंगे। वो चले गए। तो राजा को क्रोध आया कि अरे मेरे कुलगुरु हैं, पहले मेरा यज्ञ कराना चाहिए था, इंद्र के पास क्यों चले गए? क्या इंद्र ज्यादा कुछ दे रहे थे क्या, दक्षिणा, या क्या बात है? तो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने किसी और से यज्ञ करवा लिया। जब आए वापस वशिष्ठ मुनि तो उनको बड़ा क्रोध आया कि अरे आपने कैसे यज्ञ कर लिया, कुलगुरु मैं हूं, मेरी अनुमति के बिना आपने कैसे करा लिया। तो उनको बड़ा क्रोध आया। तो उस समय उन्होंने राजा को श्राप दे दिया, तुम नृदेह हो जाओ। नृदेह मतलब तुम्हारा ये जो स्थूल शरीर है वो चला जाए। बहुत उस राजा ने भी श्राप दे दिया वशिष्ठ मुनि को, आप भी नृदेह हो जाओ, आप गलत कर रहे हो। आपका कर्तव्य था कुलगुरु के रूप में पहले मेरा यज्ञ कराना, आप केवल कुछ धन की खातिर इंद्र के पास चले गए, इसीलिए आप भी नृदेह हो जाओ। तो उस समय वशिष्ठ मुनि का भी देह चला गया और वशिष्ठ मुनि को रखा गया एक कुंभ में। कुंभ मतलब एक मटके में, ऐसा कहा गया है। और उसी में अगस्त्य मुनि को भी रखा गया था। और इसीलिए अगस्त्य मुनि और वशिष्ठ मुनि भाई कहलाते हैं, या दोनों कुंभ मुनि कहलाते हैं। एक और नाम है उनका कुंभ मुनि। तो उनको उसमें रखा गया उस समय। और जो राजा थे, जो जिनका शरीर जो निदेह हो गए या उनके शरीर उन्होंने त्याग दिया, तो उनके शरीर को मंथन किया गया, जिसे वहां की भाषा में मिथि कहते हैं। मिथि मंथन करना, मिथि करना। तो इसीलिए जिस स्थान पर वो किया गया वहां एक नया राज्य बना जिसे मिथिला कहा गया। तो वो मिथिला कहलाया। और उसके जितने भी राजा हुए हैं उनको जनक का पद दिया जाता है। तो जनक ये एक पद है, ये नाम नहीं है। जो सीता देवी के पिता हैं ये उनका नाम नहीं है, उनका नाम है शिरध्वज। दो भाई हैं शिरध्वज कुशध्वज। तो शिरध्वज जनक कहलाते हैं जो सीता देवी के पिता हैं। लेकिन उनके कुल में जो भी राजा बनते हैं उन सबको जनक कहा जाता है। जैसे पूर्व काल में उनके राज्य में एक राजा हुए जिनको ये धनुष मिला था, तो वो भी जनक कहलाए थे। वैसे देवरात उनका नाम था, तो उनको भी जनक कहा जाता था। तो ये इतिहास मिथिला का। और अब इतिहास इस धनुष का। ये धनुष कैसा था वर्णन करते हैं वाल्मीकि मुनि कि जब उसको लाने के लिए कहा गया, एक बहुत बड़ी गाड़ी पर रखा गया था वो, और जब लाने के लिए कहा गया तो 5000 लोग, हट्टे कट्टे लोग, बड़ी मुश्किल से उसको खींचकर ला रहे थे। ये धनुष था। अभी हम लोग तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है कि 5000 लोग बड़ी मुश्किल से उसको खींचकर ला रहे। तो क्या था इस धनुष का इतिहास? एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं में नारद मुनि और इंद्र आदि बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी। तो चर्चा क्या हुई, ऐसे चल रही थी तो कहा कि कुछ बहुत दिनों से कुछ रोमांचक हुआ नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ है चीज, कुछ किया जाए तो क्या किया जाए? बोले कुछ ऐसा जो अब तक नहीं हुआ। तो बोले अब तक तो शिवजी और भगवान का युद्ध नहीं हुआ अगर वो हो जाए तो कितना आनंद आए, नारद मुनि ने कहा है। तो इंद्र ने कहा ये बढ़िया है, इंद्र हम जाकर शिवजी से प्रार्थना करेंगे कि वो भगवान से लड़। बोले वो तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, वो क्यों लड़ेंगे भगवान से? बोले हम लोग प्रार्थना मांगेंगे, चलिए सब। तो फिर इंद्र आदि देव सब लोग गए शिवजी के पास। शिवजी से उन्होंने कहा, शिवजी हमारी एक बड़ी प्रार्थना, बड़ी तीव्रता से आपसे हमारी हमारी जो मांग है पूरी कीजिए। तो क्या प्रार्थना है आपकी? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस हम ये चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि आप भगवान से युद्ध करें, विष्णु से। तो शिवजी ने कहा क्या मैं भगवान से युद्ध करूं? मेरे स्वामी हैं वो, है हमारी यही इच्छा है। तो जब देवताओं ने बहुत कहा तो यही बात है कि हम बता रहे थे पहले भी कि शिवजी बड़े भोले हैं। तो शिव जी ने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं करूंगा। उनके हाँ कहने का कारण क्या था? वो ये सोच रहे थे कि कम से कम मैं दर्शन तो कर लूंगा, मालूम था हारने वाला तो हूं मैं। जीतने की इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान के दर्शन की इच्छा थी, और फिर थोड़ा सा उनसे युद्ध करके उनकी सेवा भी हो जाएगी। तो शिव जी ने उसको स्वीकार कर लिया कि हम उस भगवान के दर्शन करेंगे, मुझे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो उस समय दो धनुष बने, एक को कहा जाता है महेश चाप या महेश धनुष या शिव धनुष, और दूसरा विष्णु धनुष। क्योंकि कहा कि युद्ध होना है तो आप अपने अपने शस्त्रों को नहीं, नहीं तो भगवान तो एक ही बार चक्र चलाएंगे शिवजी खत्म, तो उसको नहीं, आपके लिए अलग से बनेगा। तो दोनों के लिए विश्वकर्मा ने एक भगवान विष्णु के लिए और शिवजी के लिए दो धनुष बनाए। तो ये धनुष बड़े, ये था शिव धनुष जो शिवजी उठा सके, बहुत भयंकर धनुष। तो दोनों में युद्ध हुआ, स्वीकार किया भगवान ने भी, स्वीकार किया ठीक है। नारद ने कहा भगवान को मैं मना लूंगा, इंद्र ने कहा शिव जी को मैं मना लूंगा, ठीक है। दोनों तैयार हो गए, भगवान तो लीला करने के लिए वैसे ही आतुर रहते हैं। तो फिर दोनों का युद्ध शुरू हुआ, तीर पे तीर चल रहे हैं बड़ा, और देवताओं को बड़ा आनंद आ रहा है। एक तरफ से शिव जी, एक तो लोग थोड़ा आधे आधे हो गए, कोई विष्णु का गुणगान कर रहे हैं, कोई शिव जी का। और फिर जब थोड़ी देर हो गई तब भगवान ने कहा बहुत देर हो गई भगवान ने, तो फिर भगवान ने जब तीर चलाने शुरू किए शिव जी भागे जान बचाकर, शिव जी खड़े नहीं रह पाए। और फिर शिव जी ने उनसे कहा अरे ये तो खेल है, ये खेल है, बंद कीजिए बंद कीजिए। तो भगवान को फिर, क्योंकि वो तो खेल कर रहे थे तो सही में मार रहे हैं मुझे, भगवान भी नहीं मारने वाले थे, वो भी खेल ही कर रहे थे। तो ये जो दो धनुष थे, जो भगवान विष्णु का धनुष था, ये उनको ऋचिक ऋषि को दिया भगवान ने। ऋचिक ऋषि के से जमदाग्नि, जमदाग्नि से परशुराम जी के पास आया। और शिवजी का धनुष देवरात जनक को दिया गया, फिर देवरात जनक के द्वारा उसके वंशजों से होते हुए अब क्षीरध्वज अर्थात ये जो सीता देवी के पिता हैं इनके पास ये धनुष आया था। तो ये इस धनुष का इतिहास है कि कैसे ये इतना भारी था। एक स्थान पे लिखा गया है कि उन्होंने ये शर्त क्यों रखी सीता देवी के लिए कि जो इस धनुष को उठाएगा वो केवल सीता से विवाह करेगा। कई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वर्णन है। एक वर्णन आता है क्योंकि जनक महाराज चाहते थे कि भगवान आए और इसको उठाएं, क्योंकि शिव जी के धनुष को विष्णु के अलावा और कोई उठा नहीं पाएंगे, तो इसीलिए उनका इंतजार कर रहे थे। दूसरा एक कारण दिया जाता है कि एक समय ऐसा हुआ कि सीता देवी बड़ी छोटी थी, खेल रही थी। सीता देवी का भी इतिहास कहेंगे कैसे प्राप्त हुई, और उसके कई अलग अलग वर्णन हैं कि कैसे सीता देवी प्राप्त हुई। तो उन्होंने, ये जो सीता देवी छोटी सी थी, खेल रही थी, तो एक समय उन्हें कुछ पेड़ से फल तोड़ने की इच्छा हुई और उनका हाथ नहीं पहुंच रहा था, छोटी थी। तो उन्होंने इधर उधर देखा, कुछ दिखा नहीं, तो देखा दूर अंदर ये धनुष पड़ा हुआ था शिव जी का। तो सीता देवी गई, उन्होंने धनुष उठाया और ऐसे उससे वो फल तोड़ने लगी उस धनुष से। तो मंत्रियों ने देखा, वहां पर मंत्री खड़े थे, उन्होंने देखा कि सीता ने एक हाथ से वो धनुष उठाकर वो फल तोड़ रही है। तो वो भागे जनक महाराज के पास, और जनक महाराज को जाकर महाराज महाराज, तो जनक ने कहा क्या हो गया, कोई शत्रु? बोले नहीं, क्या हुआ? तो उनका सीता ने शिवजी का धनुष उठा लिया। जनक महाराज ने सोचा शायद बाहर धूप ज्यादा है, इसको कुछ प्रभाव हो गया है। सीता बच्ची है छोटी सी, 5000 लोग जिसको खींचने के लिए लगते हैं, सीता वो धनुष उठा लेगी? हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा बैठ जाओ। तब तक दूसरा भागता हुआ है, महाराज महाराज मेरे क्या हो गया, पर सीता ने धनुष उठा लिया। अब तो जनक ने कहा लगता है कुछ गड़बड़ है। तो जनक महाराज खुद गए और देखा उन्होंने सीता देवी फल तोड़ रही है उससे। तो इसीलिए उन्होंने शर्त रखी कि अगर ये धनुष ऐसे उठाकर फल तोड़ सकती है तो इसका पति कम से कम इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला तो होना चाहिए। तो खैर जो भी सही हो, तो उन्होंने ऐसी शर्त रखी थी इस धनुष के विषय में। और फिर जनक महाराज सीता का भी इतिहास कहते हैं, क्योंकि अब स्वयंवर की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो सीता के भी बारे में बताते हैं कि दरअसल सीता किसकी पुत्री है और कैसे मुझे प्राप्त हुई। तो ये चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु।
जैसे विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि और उनके पुत्रों को श्राप दिया, तो मैं नहीं लगा हुआ नहीं। वो जबकि उस समय राज ऋषि थे, लेकिन एक क्षत्रिय ने श्राप दिया उनके जो राजा थे, जिनके कुलगुरु थे वशिष्ठ, तो उनको श्राप लग गया।
ये कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि वहां पर आज से समझाया गया है, क्योंकि त्रुटि उस समय वशिष्ठ मुनि की थी, क्योंकि वो जो गए थे उन्हें जाना नहीं चाहिए था, तो त्रुटि उस समय वशिष्ठ मुनि की थी। लेकिन यहाँ त्रुटि वशिष्ठ मुनि की नहीं थी, क्योंकि वो जो कर रहे थे शास्त्र के नियम के अनुसार कर रहे थे, इसीलिए उन्हें श्राप नहीं लगा, ये बताया गया। हमने सोचा था इसको कहेंगे, मिस हो गया। तो ये उनको श्राप इसलिए नहीं लगा क्योंकि त्रुटि वहां पर थी, वो इंद्र के पास चले गए दो कारणों से, कि उनसे कुछ ज्यादा कुछ मिलेगा। और तो ये एक जगह पर लिखा हुआ कि ये उनके एक्चुअली त्रुटि थी, उन्हें करना नहीं चाहिए था, तो इस कारण से उन्हें श्राप लगा। और कोई प्रश्न? अंजी, विष्णु धनुष की आएगी अभी बात, वो भी जस्ट अभी बस ये स्वयंवर हो जाए सीता देवी का, अयोध्या पहुंचने से पहले मिल जाएंगे आपको। कोई और प्रश्न है किसी के? हाँ जी। इतिहास, उस समय उनको इतिहास पहली बात पता नहीं थी, तो अब पता चल रही है, वो भी अभी दशरथ नहीं है वहां पर। दूसरी चीज, अगर इतिहास पता भी हो, लेकिन उस समय वो बहुत बड़े ऋषि हैं, ठीक है, जो भी इतिहास रहा हो, हम इतिहास से किसी व्यक्ति का वर्तमान नहीं निश्चित करते हैं। अन्यथा वाल्मीकि मुनि को कोई मुनि नहीं मानेगा, हम उनको वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हम उनको रत्नाकर डाकू नहीं कहते हैं ना? तो किसी के इतिहास से उनका वर्तमान नहीं देखा जाता, उनके वर्तमान स्थिति से उनकी उनको मान सम्मान या उनके ऊपर विश्वास किया जाता। तो भले विश्वामित्र मुनि पूर्व में जो भी रहे हो, लेकिन इस समय दोनों कह रहे थे, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ दोनों ने कहा, तो एक तरफ उनके लिए कुलगुरु हैं और दूसरी तरफ इतने महान ऋषि हैं, तो फिर उनको स्वीकार करना पहला कारण। दूसरा, जैसे हमने बताया कि इतिहास से किसी को नहीं लेना चाहिए, हर साधु का इतिहास होता है और हर पापी का एक भविष्य होता है, याद रखिए। आज जो हमें पापी दिख रहे हैं, हो सकता है कल उनका अच्छा भविष्य हो, और जो पहले पूर्व काल में पापी थे आज वो साधु हैं। तो इसलिए उनके ये एक अपराध है कि उनके इतिहास से किसी व्यक्ति को साधु या असाधु मानना। तो इसलिए उन्होंने विश्वास करके भेज दिया कि हमें इनको विश्वास करना चाहिए। फिर कुलगुरु ने कहा, तो विश्वास निश्चित करना है। उस समय बड़े प्रतिष्ठित थे विश्वामित्र मुनि। और तीसरा कारण कि ये वो समय था जब राजा साधुओं की बात को कभी टालते नहीं थे, ये वो समय था। आजकल तो समय अलग हो गया, इसलिए हमारे मन में प्रश्न आ रहे हैं। ये वो समय था कि साधुओं ने, उसका प्रमाण क्या है, हम कल दो दिन पहले वर्णन कर रहे थे कि रावण को बंदी बना लिया था कार्तिकवीर अर्जुन ने, हम लोग वर्णन किए थे। तो कार्तिकवीर अर्जुन ने बंदी बना लिया कि ये बड़ा बदमाश सब जगह घूमता फिरता, भी पड़ा रहेगा जेल में, देखते हैं कौन छुड़ाता है। कोई छुड़ा नहीं सकता था, किसी की शक्ति नहीं थी। पुलत से ऋषि आए, उन्होंने कहा कि मेरे लड़के का लड़का है, ये मेरा पोता है, तो इसको छोड़ दो। कार्तिकवीर अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया उनसे, तुरंत छोड़ दिया। ये भी नहीं कहा कि जानते हैं इतना पापी आदमी है, छोड़ूंगा तो इसको क्या होगा, ये क्या करेगा, कुछ नहीं। क्योंकि इतने बड़े ऋषि ने आकर प्रार्थना की कि इसको छोड़ दो, तुरंत छोड़ दिया उसने। कोई प्रश्न नहीं किया, कुछ नहीं पूछा। तो समय ऐसा था जहाँ ऐसे बड़े बड़े ऋषियों का, ऐसे बड़े बड़े साधुओं का बड़ा मान सम्मान होता था। वो वैसे कुछ मांगते ही नहीं थे, और अगर उन्होंने कुछ मांग लिया तो राजा आतुर रहता था। दरअसल ये ऐसे ऋषि हैं विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ इत्यादि, कि इनको देने के लिए सारे राजा आतुर रहते थे कि बोले तो सही, क्योंकि ये लोग मांगते ही नहीं थे। और फिर जब वो लोग मांगे तो कौन मना कर सकता है, इसलिए दशरथ महाराज ने भेज दिया। कोई और प्रश्न? हाँ
जी, आपने बताया कि इतने महान ऋषि भी माया के वश में आ जाते हैं, तो हम जैसे जीव का
इतने महान ऋषि भी माया के वश में आ सकते हैं तो हमारा क्या होगा? हमारा से एक सही बात है कि हम भी आ सकते हैं, और हम हैं ही, आ सकते हैं नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम तो हैं ही। तो हमारी क्या स्थिति है? हमारी यही स्थिति है कि अगर हम इस समय वैष्णवों के चरण के आश्रय में रहें, एक ही हमारे लिए साधन है, श्रील प्रभुपाद के चरणों को पकड़े रहे, जो उन्होंने हमें मार्ग दिया है उसका पालन करते रहे। माया आएगी, संघर्ष करें, हृदय प्रामाणिक हो, हृदय में प्रामाणिकता, और हम संघर्ष करें तो निश्चित हम बच सकते हैं। लेकिन अगर हम संघर्ष नहीं करें, छल करें, तो फिर श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में रहकर भी बड़ी आसानी से आप माया में पड़ सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत सुंदर व्यवस्था श्रील प्रभुपाद ने की है कि चरणों को पकड़ लीजिए उनके। आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे, बस ये मार्ग है हमारा कि हम जाने कि हम वैष्णवों के चरणों में रहें, मार्ग पर रहें, प्रार्थना करें। तो और ये बात ध्यान रखें कि हम अपने बल से नहीं जाएंगे, हम अपने बल से माया के परे नहीं जा सकते, ये बल शुद्ध वैष्णवों का या स्वयं भगवान का हो सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है कि जाने की बले तोमार स्थाने ते हईनु शरणागति। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि जाने की बले, किसके बल पर, किसके आधार, किसकी शक्ति से मेरा आपके प्रति शरणागति हो रही, मैं नहीं जानता। कोई ना कोई भक्त ने प्रयास किया होगा मुझे यहाँ तक लाने के लिए, नहीं तो अपने बल पर तो हो नहीं सकता। तो ये मार्ग है भक्ति का। ठीक है, और कोई प्रश्न है? शिव जी और विष्णु में बड़ा कौन है, और क्या विष्णु और कृष्ण एक है? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। शिव जी का वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं ब्रह्म संहिता में, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वो कहते हैं कि जैसे दूध से दही बनता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, किसी थोड़े से विकार के कारण वो दही बन जाता है, इसी तरह भगवान से, कृष्ण से शिव जी आते हैं। विकार क्या है? तमोगुण का वो स्पर्श करते हैं, इसीलिए वो दही के समान है और कृष्ण दूध के समान है। दूध से आप जितना चाहे दही बना सकते हैं, दही को वापस दूध में नहीं परिवर्तित कर सकते। तो ये ब्रह्मा जी समझाते हैं। और वैसे भी भागवत में कहा गया है निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो भगवान के सबसे बड़े भक्तों में से वो एक है, वैष्णवों में से वो एक हैं। तो इसीलिए ये स्थिति शिव जी की है। और विष्णु और कृष्ण एक हैं या नहीं हैं, कृष्ण मूल हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि हम लोगों को ये ब्रह्म संहिता गानी चाहिए रोज, ताकि ये बार बार हमारे मन में बैठे कि कृष्ण कौन है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, तो कृष्ण ही सारे कारणों के कारण है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? इसलिए कि उस समय जब नारद मुनि ने उनको ये मंत्र दिया था तो उनको ज्ञान पूरा नहीं दिया था कि क्या ये मंत्र है। उन्होंने विश्वास किया नारद मुनि पर, और नारद मुनि ने कहा तुम ये मरा 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 कहो, तुम तो राम बोल नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें आदत हो गई ये मरा वो मरा कहने की, तो तुम मरा मरा करो। तो उन्होंने मरा 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 किया, और उस जब से उनको ये सब प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान राम भगवान है, ठीक है वो पता, लेकिन उनकी पूरी लीलाएं उनको पता नहीं थी उस समय तक, जब तक उन्होंने लिखा नहीं था। हालांकि लीला हो रही थी, रामचंद्र जी वहीं उस समय राज्य कर रहे थे जिस समय ये हुआ, लेकिन फिर भी उनको ये पता होना था, पहला कारण। दूसरा कारण है कि वाल्मीकि मुनि परंपरा का पालन करना चाहते हैं। तो जब उन्हें ब्रह्मा जी से आदेश हुआ, जब नारद मुनि ने उनको बता दिया संक्षेप में, तब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, ताकि ये बता सकें जगत को कि जब तक गुरु का आदेश नहीं हो तब तक हमें कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है, क्योंकि उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने नारद मुनि से सुना और फिर उन्होंने उसको लिखा। ठीक है, हाँ जी। अगस्त मुनि का जन्म हुआ था उससे, तो जिससे उनका जन्म हुआ जिस मटके में, उसी में इनको भी रखा गया था, तो इसीलिए दोनों भाई कहलाते हैं या कुंभ मुनि कहलाते हैं। तो अगस्त मुनि का जन्म ही वैसे हुआ था इनको, तो क्योंकि हृदय हो गए थे रखा गया था, अगस्त मुनि को रखा ही वहीं, उनका जन्म ही उससे हुआ था अगस्त मुनि का, तो इसीलिए वो भी कुंभ मुनि कहे जाते हैं, दोनों एक ही मटके में रखे गए थे। यस, सदाशिव शिव रुद्र और शंभु। हमें तो लगता है यहाँ शिव जी के ऊपर क्लास देनी पड़ेगी। अंतर है निश्चित, और है वैसे एक ही तत्व के, शंभु तत्व के अलग अलग विस्तार, लेकिन फिर भी सदाशिव ये आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं भगवान के। और शिव तत्व जो है वो इस जगत में मूल तत्व है, जिनसे अन्य सारे शिव जी आते हैं। जैसे अलग अलग ब्रह्मांडों में जो शिव प्रकट होते हैं वो शिव तत्व से आते हैं। रुद्र किसी एक ब्रह्मांड में 11 रूपों में शिव जी अपने आप को प्रकट करते हैं, और उनके अलग अलग कार्य हैं, हर एक के अलग अलग कार्य हैं, तो उनको रुद्र कहा जाता है। तो वो 11 रुद्र होते हैं। तो ये ऐसे सदाशिव शिव और रुद्र है उसी एक तत्व के विस्तार, लेकिन अलग अलग कार्य करते हैं, इसीलिए अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है?
तीसरे अध्याय में भगवत गीता भी कहते हैं कि हमें जनक की तरह कर्तव्य करने चाहिए।
हाँ जी,
तो जनक जी इतने, जनक जी का जो स्तर है वो इतना जरूरी क्यों है कि भगवान जो उनका नाम,
बहुत अच्छा, भगवत गीता में भगवान ने जनक महाराज का नाम लिया, शायद ही किसी और राजा का नाम लिया हो, पांडवों का छोड़ के, ऑफकोर्स कम कौनते तो लेते रहते कुंती पुत्र, लेकिन अन्य किसी राजा का, जनक का लिया, तो क्या ऐसा महत्व है जनक महाराज का उन्होंने लिए। जनक महाराज बहुत ज्ञानी थे, ज्ञानी होते हुए भी बहुत बड़े भक्त थे। जब हम लोग 12 महाजनों की बात करते हैं, किसी को याद है कौन से 12 महाजन हैं? कोई बोल सकते हैं आप में से 12 महाजन, पता है आपको? हाँ, ट्राई करिए। डायरेक्ट बलि से प्रारंभ कर रहे हैं, पहले के कहाँ गए? ओके, कौन ट्राई करेंगे? कोई नहीं? स्वयंभू नारद शंभु, इसलिए हमको श्लोक याद करने चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं रहती। स्वयंभू याने ब्रह्मा जी, स्वयंभू नारद शंभु, कुमारो कपिलो मनु, तो ये सारे उनमें जनक का नाम आता है। जनको भीष्मो, तो बलि वयर्साकी वयम। तो जब ये जनक महाराज 12 महाजनों में से एक हैं, पहला कारण, और दूसरा बहुत ज्ञानी थे, और ज्ञानी होने के साथ साथ बहुत महान भक्त थे, तो यहाँ पर वो विशेष नाम उनका इसलिए लिया गया क्योंकि वे अपने कर्म, वो जो सेक्शन है भगवद गीता का, तो उसमें क्या विस्तार, क्या बातचीत हो रही है, किस चीज की नाम, तीसरे अध्याय का नाम, तीसरे अध्याय में है ना, क्या नाम है उसका? कर्मयोग। तो जनक महाराज अपने स्थान पर रहते हुए, राज्य करते हुए, सब करते हुए भगवान के महान भक्त हैं, तो इसलिए उनका नाम वहां पर लिया गया, क्योंकि उन्होंने कोई कर्म त्यागा नहीं, वो देवता नहीं है, लेकिन अपने स्थान पर रहकर अपने कर्म को करते हुए, नियमित कर्मों को करते हुए वो भगवान के बहुत महान भक्त हैं। ऐसा कहा जाता है इतने महान भक्त हैं कि सुखदेव गोस्वामी को भी उनके पास ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, ऐसा वर्णन आता है। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक प्रश्न और है, थोड़ा जल्दी पढ़ा करो बोलने, अभी आया प्रश्न। हाँ,
battle between Indra and Durvasa during Yam. Still one is Great Muni and other is demigod. How please explain?
Indra और Durvasa के बीच में
वो विश्वामित्र, विश्वामित्र के बीच में,
हाँ, तो शंकु के लिए इंद्र और विश्वामित्र के बीच में अहंकार का, तो फिर एक अभी देवता हैं और दूसरे महान ऋषि कैसे हुए? हम ये बता रहे थे कि उस समय तक विश्वामित्र मुनि महान ऋषि नहीं बने थे, वो राज ऋषि थे, और आगे चलकर हमने बताया उन्होंने तपस्या की, फिर मेनका, फिर रंभा, और उसके बाद ब्रह्म ऋषि का उनको पद प्राप्त हुआ। तो पहली चीज, उस समय तक नहीं थे, इसीलिए दूषण बने हुए थे कि मैं भेज दूंगा। दूसरी ओर इंद्र हैं, वो देवता हैं, लेकिन वो भी मिश्र भक्त हैं, और इसीलिए, और वैसे वो नियम का पालन कर रहे थे, इंद्र की तरफ से कोई अहंकार का प्राकट्य नहीं था। इंद्र ने नियम है कि आप प्रवेश नहीं कर सकते देह के साथ, तो केवल वो नियम का पालन कर रहे थे ये बताने के लिए कि हम नहीं ले सकते, तो इसलिए उसमें कोई अहंकार नहीं है, वो केवल अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।